वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपको मेरा नमस्कार। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने पिलातुस के सामने यीशु का लाया जाना, पिलातुस के प्रश्न और यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का वर्णन देखा था। आज के इस अध्ययन में हम यीशु के प्राण त्यागने के समय हुई घटनाओं एवं यीशु का गाड़ा जाना, उसका पुनरुत्थान और अंतिम आज्ञा के बारे में जानेंगे। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय और उसके 51 पद से आज के अध्ययन को आरंभ करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। मित्रों, हम यीशु के मृत्यु से संबंधित घटनाओं को देखेंगे और यहाँ पर ध्यान दें कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यह परमेश्वर का कार्य था और मनुष्य का नहीं। वह पर्दा यीशु के शरीर को संकेत करता है। जब उसका शरीर क्रूस पर चढ़ाया गया, तब उसने हमारे पापों को अपने देह अर्थात शरीर में उठा लिया और परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे जाने का मार्ग खोल दिया। इसलिए आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए न ही किसी पादरी या उपदेशक की आवश्यकता है, परंतु हम सीधे परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख में प्रभु यीशु के द्वारा जा सकते हैं। आइए हम केवल इस बात पर जोर दें कि पिता के पास जाने का केवल एक ही मार्ग है और वह उसके पुत्र यीशु के द्वारा है। पहला तीमोथियुस की पत्री 2:5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आगे हम मत्ती रचित सुसमाचार 27:52-53 में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की लोथें जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। मित्रों, यह एक ऐसी घटना है जिसके बारे में सिर्फ मती ही वर्णन करता है। हमारी इच्छा है कि शायद वह हमें थोड़ा और ज्यादा बताता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि जैसा मती ने हमें बताया है वैसा ही हुआ, और जो जी उठे वे उस बड़े समूह में थे जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठा लिए जाने के समय में उसके साथ स्वर्ग चले गए। हम देख सकते हैं इफिसियों की पत्री 4:8-10 में। मित्रों, पद 51 में जिस भूकंप का वर्णन किया गया है वह एक विशेष भूकंप था। इससे किसी जानमाल की हानि नहीं हुई थी, परंतु भूकंप के कारण कब्रें खुल गई और कुछ निश्चित संतों का शरीर जीवित हो उठा, अर्थात वे जी गए और बहुतों को दिखाई दिए। बहुत सारे लोगों के द्वारा गवाही दी गई कि ये लोग दिखाई दिए, क्योंकि मत्ती के अनुसार वे पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। इस क्षण में बहुत अच्छे चमत्कार भी हुए। एक किताब बिशप निकोलस द्वारा लिखित कलवरी के 6 चमत्कार को आप जरूर पढ़ें, जिसमें इन चमत्कारों को अच्छी तरह से बताया गया है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अवश्य पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27:54 में लिखा हुआ है, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। मरकुस रचित सुसमाचार में हमें इस प्रकार से बताया गया है, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15:39 में लिखा है, जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। मित्रों, स्पष्ट रूप से वह सूबेदार जो क्रूसीकरण का अध्यक्ष था प्रभु के क्रूस के नीचे खड़ा था और उस समय हो रहे चमत्कार का वह एक गवाह था, और उसने देखा कि प्रभु का आत्मा अलग हो रहा है। उसने माना कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और मुझे विश्वास है कि वह सूबेदार भी बचाया गया होगा। वह बहुत कुछ नहीं जानता था और न ही उसने धार्मिक पुस्तकें पढ़ी होगी, पर वह इतना जानता था कि वह प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे खड़ा है, और यह अपेक्षा परमेश्वर हर पापी से रखते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27:55-56 में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। मित्रों, आगे अब हम देखते हैं यीशु यूसुफ की कब्र में दफनाया गया। मत्तीरची सुसमाचार 27 अध्याय उसके 57 पद में लिखा है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरमतियाई का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। मित्रों, इस घटना के घटने तक हमें नहीं पता था कि वह यीशु का शिष्य है। हमें यह जानकर आश्चर्य होता है कि जिस कारण से सारे चेले इधर उधर चले गए थे, उन्हें दूसरे चेले जो अभी तक गुप्त रूप से यीशु के पीछे चल रहे थे, उन्हें खुले रूप में सामने लेकर के आए। अरमतिया का यूसुफ सामने आया और उसने अपने विश्वास की घोषणा की। मत्तीरची सुसमाचार उसके 27 अध्याय उसके 58 पद में आगे हम पढ़ते हैं, इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यीशु पिलातुस के पास इस आधार पर गया कि वह यीशु का चेला था। मत्तीरची सुसमाचार उसके 27 अध्याय और उसके 59 पद में हम आगे पढ़ते हैं, यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा। मित्रों, यूहन्ना हमें बताता है कि निकोदिमस यीशु के साथ यीशु के शरीर को दफनाने के लिए तयार कर रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 39 और 40 पद में लिखा है, निकोदिमस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। मित्रों, ये दोनों व्यक्ति जो प्रभु के पीछे पीछे रहते थे, यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रभु के चेले के रूप में सामने आए। यह एक मजेदार बात है कि यीशु की मृत्यु के पश्चात उसके चाहने वालों ने ही उसके शरीर को छुआ। हम मत्तीरची सुसमाचार उसके 27 अध्याय के 60 और 61 पद में पढ़ते हैं, और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया, और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। मित्रों, यीशु की मृत्यु से संबंधित एक कोमल घटना पर ध्यान दें कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां विश्वास योग्य थी, क्रूस के पास ठहरी रही जबकि चेले भाग गए, फिर भी वे वहीं पर विश्वास योग्यता के साथ बनी रही। मित्रों, पर्वत के निकट एक स्थान है जिसे हम गोर्डन्स कलवरी कहते हैं। वहां पर एक कब्र थी जिसे यीशु के कब्र के रूप में पहचाना गया, जिसमें यीशु को दफनाया गया था। यह बगीचे की कब्र कहलाती थी, और यदि यह यीशु की ही कब्र थी तो हमारे पास इसे जानने के लिए कोई मार्ग भी नहीं है। मित्रों, मुझे थोड़ा संदेह जरूर होता है कि वह यीशु की ही कब्र थी या नहीं, क्योंकि वहां पर और भी कब्रें थी और उनमें से कोई भी कब्र यीशु की हो सकती थी। पर मुझे भरोसा है कि यीशु की कब्र उसी स्थान में थी, और बगीचे की कब्र को चुनना किसी के लिए भी उतना ही अच्छा था, परंतु गोलगाथा के सही स्थान का निर्णय लेना और कब्र को निश्चित करना और उस स्थान को पवित्र बनाना यीशु का उद्देश्य नहीं था। मित्रों, मैंने सुना है कि एक स्त्री घुटने के बल कब्र की जमीन को चूमते हुए जाती है जहां पर यीशु के शरीर को रखा गया था, जबकि ऐसा करना कोई भी महत्व नहीं रखता है। लेकिन हमारा प्रभु हमसे चाहता है कि हम सुसमाचार पर विश्वास करें कि वह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से फिर जी उठा, और इसी सुसमाचार को सारे जगत में पहुंचाना है। अब हम आगे देखते हैं कब्र पर मुहर लगाना और पहरा देना। मत्तीरची सुसमाचार उसके 27 अध्याय और उसके 62 पद से लेकर के 66 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, सो आज्ञा दे कि 3rd दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुए में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। वास्तव में यीशु के शत्रुओं के उत्साह उसके जी उठने का दृढ़ीकरण देते हैं। यदि वे उस कब्र को ऐसे ही छोड़ देते और चले जाते तो बाद में कब्र के खाली होने पर संदेह होता। परंतु मेरे मित्रों, जब कब्र के पत्थर पर मुहर लगा दी गई और रोमी पहरेदारों को रखवाली के लिए वहां पर नियुक्त कर दिया गया, तो चेलों द्वारा यीशु के शरीर को चुरा ले जाने की बात बिल्कुल बेवकूफी भरी बात होगी। यीशु के शत्रुओं को यीशु के कब्र पर कड़ी नजर रखने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और यही तथ्य इस बात को अद्भुत रीति से दृढ़ करता है कि यीशु सचमुच जी उठे थे। और एक रोचक बात यह है कि जब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा, तो ये बातें बहुतों को बताई गई और यह धार्मिक अगुओं के पास भी पहुंची। और जितना जल्दी वे पिलातुस के साथ और अधिक भीड़ को पाते, उन लोगों ने पिलातुस से कहा, देख यीशु ने कहा है कि वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा, इसलिए हम निश्चित करना चाहते हैं कि तीसरे दिन तक उसके कब्र में उसका शरीर रहना चाहिए। यह बात सच है कि उनमें से किसी ने भी उसके जी उठने की बात पर भरोसा नहीं किया था, और न ही चेलों ने विश्वास किया कि वह कब्र से जीवित बाहर आएगा। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 27 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 28 से आरंभ करेंगे, जो इस पुस्तक का आखिरी अध्याय भी है। हम इस अध्याय में यीशु का पुनरुत्थान और महान आदेश देने के बारे में देखेंगे। मित्रों, बाइबल दो महान स्तंभ पर टिका है, पहला यीशु का मृत्यु और दूसरा यीशु का पुनरुत्थान। प्रेरित पौलुस सुसमाचार की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय और उसके 3-4 पद में लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने यीशु की मृत्यु और दफनाए जाने के बारे में देखा था, और इस अध्याय में हम उसके पुनरुत्थान के बारे में देखेंगे। ये दोनों ही बातें आपके और मेरे उद्धार के लिए बहुत आवश्यक हैं। रोमियों के पत्र 4 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा है, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। मित्रों, वह हमारे लिए पापी ठहराया गया ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन सके या गिने जाएं। मित्रों, सुसमाचार का एक अनूठा तथ्य पुनरुत्थान है, और अन्य सभी धर्म ग्रंथों में उनके गुरुओं की मृत्यु का वर्णन मिलता है, परंतु सिर्फ मसीही विश्वास ही अपने गुरु या संस्थापक के पुनरुत्थान के लेख का वर्णन करते हैं। अन्य सभी धर्म के अगुए मर गए और यीशु भी मरे, परंतु तीसरे दिन जीवित हो गए, जो अन्य लोग नहीं कर पाए, अर्थात जीवित नहीं हुए, सिर्फ यीशु ही जिंदा है। यह जानना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण और प्रभावपूर्ण है। मित्रों, किसी भी सुसमाचार के लेखकों ने पुनरुत्थान से संबंधित बातों का पूर्ण विवरण नहीं दिया है, परंतु प्रत्येक लेख में पुनरुत्थान के एक रूप को बताया गया है जो भविष्य के उद्देश्य को बताता है, जो पवित्र आत्मा के मन में है। इसलिए चारों सुसमाचार पुनरुत्थान के बारे में मिश्रित चित्र प्रस्तुत करते हैं। कोई भी लेखक इस बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश नहीं करते हैं, परंतु सिर्फ वही करते हैं जो उनके उद्देश्य को पूरा करता है, जबकि सभी सुसमाचारों के लेखों को एक साथ मिलाकर चित्रित करना चाहिए था ताकि सही तस्वीर प्राप्त की जा सके और लोगों में कोई भी मतभेद या विवाद ना आए। मित्रों, मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित घटनाओं को मैं क्रमवत रूप से बताना चाहता हूं। इसके बारे में स्कोपफील्ड रेफरेंस बाइबल के पेज नंबर 1043 में सुंदर ढंग से बताया गया है। हम इस घटनाक्रम को 4 भागों में देखेंगे, जो इस प्रकार से हैं। 3 स्त्रियां, मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी, सब कब्र की ओर चल पड़ी, और अन्य स्त्रियां भी इत्र के साथ उनके पीछे चल पड़ी, और उन तीनों स्त्रियों ने कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ पाया, और मरियम ने ये बातें जाकर चेलों को बताई, जिसे हम लुकार्च सुसमाचार 23 अध्याय उसके 55 पद से लेकर 24 अध्याय के 9 पद और यूहन्नारच सुसमाचार उसके 20 अध्याय और उसके 1-2 पद में देखते हैं। याकूब और येशूस की माता मरियम ने कब्र के निकट स्वर्गदूत को देखा। हम मत्तयरचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसके 2 पद में पढ़ते हैं, और देखो एक बड़ा भूइंडोल हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। मित्रों, यहाँ पर हम पाते हैं कि वह दूसरी स्त्रियों से मिलने के लिए चली गई जो लेप लगाने वाले द्रव्य के साथ आ रही थी। उसी समय यूहन्ना और पतरस भी पहुंच गए जो मरियम मगदलिनी के द्वारा चेतावनी पाकर आए थे। उन्होंने अंदर जाकर देखा और चले गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 3-10 पद में हम देखते हैं कि मरियम, जो याकूब और येशूस की माता थी, रोती हुई कब्र के निकट आई और उसने 2 स्वर्गदूतों को देखा और बाद में यीशु को भी देखा, और वह यीशु के कहने के अनुसार वहां से चली जाती है और चेलों को बताती है, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 11 पद से लेकर के 18 पद में देखते हैं कि याकूब और यूसुफ की माता मरियम दो स्त्रियों से मिली थी जो अपने साथ में द्रव्य पदार्थ लाई थी, और जब वह उनके साथ वापस आई तो दो स्वर्गदूतों को भी देखा। हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 4 और 5 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 5 पद में देख सकते हैं। उन्होंने भी स्वर्गदूतों के संदेश को प्राप्त किया और चेलों को देखने चली गई, क्योंकि वे प्रभु से मिली और उसे देख चुकी थी, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 8 से 10 पद में देखते हैं। मित्रों, हमारे प्रभु के प्रकट होने के क्रम को हम इस तरह से देखते हैं जो उसके जी उठने के दिन के बात में है। पहला, मरियम मगदलीनी को दिखे, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 14 पद से लेकर के 18 पद में पाते हैं। दूसरा, वे स्त्रियां जो स्वर्गदूतों के संदेश को सुनकर कब्र से लौट रही थी, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 8 से 10 पद में। तीसरा, शायद दोपहर के वक्त पतरस को, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 34 पद में, पहला कुरिन्थियों के पत्र 15 अध्याय उसके 5 पद। और चौथा, इमाउस में रहने वाले चेलों को शाम के समय, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 13 पद से लेकर के 31 पद में। और पांचवा, थोमा को छोड़ अन्य सभी चेलों को दिखाई दिए, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 36 पद से 43 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 19 से 24 पद। अब 8 दिनों के पश्चात पहला, थोमा के साथ और चेलों को दिखाई देते हैं, यूहन्ना उसके 20 अध्याय के 24 से लेकर के 29 पद में। अब गलील में पहला, तिबरियस झील के पास 7 लोगों को दिखाई देते हैं, यूहन्ना 21 अध्याय उसके 1 से 23 पद में। दूसरा, पहाड़ पर चेलों और 500 बंधुओं को दिखाई देते हैं, पहला कुरिन्थियों के पत्र 15 अध्याय उसके 6 पद। यरूशलेम में और बैतनिया में फिर से यीशु दिखाई दिए, पहला याकूब को, जिसे हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 15 अध्याय के 7 पद में, और दूसरा 11 लोगों को दिखाई दिए, मत्ती 28 अध्याय के 16 से लेकर के 20 पद में, मार्कुस 16 अध्याय उसके 14 से 20 पद में, लूका 24 अध्याय उसके 33 पद से 53 पद में, प्रेरितों के काम 1, 3 और 12 अध्याय में। आगे हम देखते हैं कि पौलुस को दिखे, पहला दमस्कस के निकट में, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 से 6 पद में, पहला कुरिन्थियों के पत्र 15 अध्याय उसके 8 पद में, और दूसरा मंदिर में दिखे, प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 17 पद से लेकर के 21 पद, 23 अध्याय के 11 पद में। स्तीफन को यरूशलेम के बाहर दिखे, प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 55 पद में, और यूहन्ना को पतमोस में दिखे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 10 से लेकर के 19 पद में। मित्रों, मत्ती ने यीशु को राजा के रूप में दर्शाया है। पुनरुत्थान की कहानी की विशेषता इसमें प्रभावशाली और संवेदनात्मक बातें बताई गई है। मत्ती के अनुसार यीशु ने राजा के रूप में जन्म लिया, वह राजा के जैसे जिया, वह एक राजा की तरह मरा और जी भी उठा। मत्ती हमें भूकंप, स्वर्गदूतों के आने, पत्थर को लुढ़काया जाना, डरे हुए पहरुओं और धार्मिक अगुओं के द्वारा खाली कब्र के तथ्य को छुपाने की कोशिश करने का वर्णन करता है। मित्रों, आप लूका के सुसमाचार के साथ मत्ती के लेख की तुलना कर सकते हैं। लूका के सुसमाचार में शांति और स्थिरता भरे शब्दों के प्रयोग से लूका के उद्देश्य को प्रकट किया गया है। स्त्रियां भोर को कब्र के पास आई और पत्थर को लुढ़का हुआ पाया। यीशु दो चेलों को इमाउस के रास्ते में दिखाई दिए, जो एक अंधकारमय रास्ता था, और तब एक अज्ञात घर के गुप्त कमरे में अपने शिष्यों को दिखाई दिए। लूका ने मानवीयता पर जोर दिया है, जबकि मत्ती ने यीशु को राजा के रूप में दर्शाने का प्रयत्न किया है। मित्रों, ये दोनों ही सुसमाचार सही है उन दूसरे दो सुसमाचारों के लेख की तरह, परंतु चारों सुसमाचार अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं दो मरियमों का कब्र के पास आना। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पह फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मित्रों, दूसरे सुसमाचार हमें बताते हैं कि वे सुगंधित द्रव्य वस्तुएं यीशु के शरीर पर लगाने के लिए ला रही थी। इसमें दूसरी मरियम को पहचानना कठिन प्रतीत होता है, परंतु परंपरा बताती है कि यह याकूब और यूसुफ की माता थी। हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 2 पद में आगे पढ़ते हैं, और देखो एक बड़ा भूंडोल हुआ क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। मित्रों, पत्थर का लुढ़काया जाना क्यों आवश्यक था? क्या यीशु को निकालने के लिए? जी नहीं, पत्थर के लुढ़काए जाने से पहले ही वह जा चुके थे। मित्रों, इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। कब्र यीशु के निकलने के लिए नहीं खुला, परंतु उन लोगों के लिए खुला कि वे अंदर जा सकें। हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। यह जानना रुचिदायक बात है कि यहाँ पर स्वर्गदूतों का वर्णन किया गया है, क्योंकि सुसमाचार में यह बहुत ही असामान्य है। आप देख सकते हैं दानियल नबी की पुस्तक 10 अध्याय उसके 6 पद में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 पद में, इसमें स्वर्गदूतों का वर्णन मिलता है। आगे हम अतिरिक्त सुसमाचार 28 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, उसके भय से पहरवे कांप उठे और मृतक समान हो गए। मित्रों, मैं सोच सकता हूँ कि पहरेदार वहां से जाने के बाद बहुत ही खुश हुए होंगे, क्योंकि वे स्वर्गदूतों की उपस्थिति में बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे। हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। मत डरो, जब भी अलौकिक शक्तियां स्वाभाविक के पास आती है या निकट आती है, तब इस शब्द का प्रयोग डर कम करने के लिए किया जाता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं, वह यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है, आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। मित्रों, यह पुनरुत्थान की स्वर्गीय घोषणा है। पत्थर लुढ़काने से पहले ही यीशु कब्र से चले गए थे, बाद में वह बंद दरवाजे वाले कमरे में भी प्रवेश करेंगे। यीशु का महिमामय शरीर पहले से भिन्न था जो जन्म के समय था। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे, देखो मैंने तुमसे कह दिया है। मित्रों, यहां पर स्वर्गदूतों की घोषणा बंद हो जाती है और यहां से मनुष्य के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है, आओ देखो, शीघ्र जाओ और बताओ। परंतु किसी व्यक्तिगत गवाही को देने का प्रयास करने से पहले उसे स्वयं को पुनरुत्थान की सच्चाई का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उसे अपने मन में अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि यीशु उसके पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और तब वह जी उठा, और तब वह कहे, आओ उस स्थान को देखो जहां पर यीशु लेटा था, और प्रभु फिर से जी उठा है, वह यहां नहीं है क्योंकि वह जी उठा है। तब इस दृढ़ विश्वास के साथ वह शीघ्र जा सकता है और लोगों को बता सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, मुझे और आपको लोगों के पास जाना है और बताना है। अब हम आगे देखते हैं यीशु का दोनों मरियम को दिखाई देना। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दें कि इस पद में दोनों स्त्रियों की मिली जुली भावनाएं दिखाई देती है, डर और आनंद। मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय और उसके 9 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जी उठे प्रभु का मरियम मगदलीनी के साथ मुलाकात का विरोध है, अर्थात खंडन हो रहा है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 17 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू क्योंकि अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मित्रों, इसका स्पष्टीकरण यही है कि इन दोनों मुलाकातों के बीच यीशु पिता के पास ऊपर गए और अपने बहुमूल्य लहू को स्वर्ग के महापवित्र स्थान में उन्होंने अर्पित किया। हम मत्ती उसके 28 अध्याय के 10 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। यीशु ने उन्हें गलील में मिलने को कहा। तब हम देखते हैं पहरुओं की सूचना। मत्ती 28 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, वे जा ही रहे थी कि देखो पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। मित्रों, पहरुए जो उसमें काम में लगाए गए थे, उन्होंने नगर में आकर प्रधान याजकों को सारी बात बताई कि उन्हें नहीं पता कि यीशु कब्र छोड़कर कब चला गया। वे सिर्फ इतना जानते थे कि जब पत्थर लुढ़काया गया तो उसका शरीर वहां कब्र में नहीं था, और इस पूरी घटना के समय उन्हें मारे जाने का भी डर लग रहा था। उनकी आंखों के सामने से यीशु के शरीर को गायब होने देने के कारण उन्हें नौकरी से भी निकाला जा सकता था। तब हम आगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 उसके 12 और 13 पद में पढ़ते हैं। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। मित्रों, यह अधिक विश्वसनीय कथन नहीं है। मान लीजिए कि एक रोमी सिपाही को किसी निश्चित स्थान पर रक्षा करने के लिए काम दिया गया है और उसे कड़े निर्देश मिले हैं कि उस खास चीज की रक्षा करे और बिना अनुमति किसी को प्रवेश करने ना दे। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आता है और इस चीज को ले जाता है जिसकी रक्षा के लिए उस सिपाही को रखा गया है, और तब वह अपने प्रधान के सामने यह बताता है कि वह जब सो गया तब किसी ने उस चीज को वहां से ले लिया, तो आप क्या सोचते हैं कि उसके साथ क्या होगा? मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 14 पद में आगे पढ़ते हैं, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। दूसरे शब्दों में कहें, चिंता मत करो, यदि यह बात हाकिमों तक पहुंचती है तो हम लोग उसे संभाल लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मत्ती 28 उसके 15 पद में लिखा है, सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। मित्रों, इस प्रकार का बहाना बनाने के लिए उन्हें घूस दी गई। यह पहली सदी की अन्यत्र स्थिति थी जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बातों को छुपाने के लिए घूस दिया गया। लेकिन सच्चाई तो यही है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा और स्वर्ग में उठा लिया गया। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में हमें इसका वर्णन नहीं मिलता है, अर्थात स्वर्गरोहण के बारे में मत्ती बात नहीं करते हैं, जबकि अन्य सुसमाचारों में हमें इसका वर्णन मिलता है। और आज मुझे और आपको यह आदेश दिया गया है कि हम इस सुसमाचार को सब लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी प्रभु को जाने कि वो मर गए, गाड़े गए और जीवित हैं और हमें उद्धार देने के लिए तैयार हैं। मित्रों, आज हमारे अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है और इस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार का भी अंत होता है। हम अगले बार नए पुस्तक अर्थात नई किताब के साथ अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, इसलिए आप उस अध्ययन में अवश्य शामिल हो। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे साथ। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे